लाइफ एंड मेडिटेशन नाम की एक किताब में स्वामी चिन्मयानंद ने एक कहानी का वर्णन किया है। एक घर में आग लग गई, भीषण आग, भयंकर आग। घर दो तीन मंजिल का है, चारों तरफ हलचल है, अफरा तफरी मच गई है, लोग यहां वहां भाग रहे हैं, भगदड़ और फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है और वहां लोग हैं। एक माँ है जो खड़ी है और उस माँ को पता चलता है कि मेरा बच्चा ऊपर तीसरी मंजिल पर है। वो फायर ब्रिगेड वाला व्यक्ति 40 साल का अनुभवी है। वो कहता है कोई भी भीतर न जाए, नहीं तो जलकर राख हो जाएंगे, क्योंकि आग बहुत भयंकर है। कोई कोना नहीं बचा है घर का। जिसमें आग की लपटें ना उठ रही हो। परंतु वो माँ जैसे ही सुनती है और उसे पता चलता है कि मेरा बच्चा ऊपर है, वो किसी की नहीं सुनती और सीधा अंदर घुस जाती है। लोग चिल्लाते हैं, रोकते हैं, वो नहीं रुकती। और थोड़ी देर के बाद वो उस बच्चे को लेकर सुरक्षित बाहर आ जाती है। उसकी साड़ी तक नहीं जलती। किताब में कहा गया ये चमत्कार से कम नहीं। पर उसी स्त्री को थोड़ी देर के बाद कहो आग की लपटे है तो वो डर जाती है आग से। अब उसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, वो आग से भयभीत है। तो वो क्या था जिसकी वजह से वो आग में घुस गई और तब उसे कोई भय नहीं था? अपना खून और प्रेम, माँ के प्रेम, माँ का प्रेम डर से बड़ा होता है। वो घुस गई और बच्चे को ले आई। उसके सामने एक लक्ष्य था, उसके सामने एक प्रेम था। परंतु वो स्त्री 24 घंटे वीरांगना बनकर नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि अब लक्ष्य नहीं। यदि कोई अत्यंत साधारण व्यक्ति भी हो, बुद्धिहीन भी हो, परंतु उसके सामने कोई लक्ष्य आ जाए तो सारी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है और अद्वितीय शक्ति प्रकट होती है। जिस ऊर्जा की उस व्यक्ति ने कल्पना भी नहीं की थी कि होगी कभी, ऐसी शक्ति कब प्रकट होती है? जब एक महान लक्ष्य सामने हो। एक ऐसी ही घटना जो सबने सुनी होगी, महाराष्ट्र की एक स्त्री थी जिसका नाम था हिरकनी। वो किले पर जाती थी गांव से दूध बेचने, रायगढ़ के किले में। सुबह जाती थी, शाम को लौट आती थी। और एक दिन किले के अंदर उस रायगढ़ दुर्ग के अंदर ज्यादा समय हो गया, किले के दरवाजे बंद हो गए। उसने उन संतरियों से कहा कि मुझे जाने दो, मेरा बच्चा घर पे अकेला है। पर नियम तो नियम है, किले के दरवाजे बंद हो चुके हैं, शाम हो चुकी है। उन्होंने नहीं सुना, अब वो अंदर बंद हो गई। वो दुर्ग ऊपर है, ऊंचाई पर है, खड़ी चट्टाने हैं सीधी, अंधेरी रात है और वो माँ ऊपर है, उसका बच्चा नीचे गांव में। वो क्या करे, रात भर रुके वहां और सुबह उतरे। वो उसी रात अंधेरे में, उसके पास कोई प्रशिक्षण नहीं है, वो सैनिक नहीं है, और वो उस खड़ी खाड़ी, उस चट्टानों के नीचे उतरती अंधेरों में। किसने प्रेरित किया उसे? एक लक्ष्य, एक प्रेम, एक भावना, एक इमोशन। उसके अंदर अभूतपूर्व शक्ति जागृत हो गई। वो साधारण स्त्री से वीरांगना बन गई और वो उतर गई। अगले दिन जब शिवाजी महाराज को ये पता चलता है, उन्हें आश्चर्य होता है। वो तो दिन में भी कोई उतर नहीं सकता है, ना चढ़ सकता है, ऐसा किला। पर उस स्त्री ने कर दिखाया। जब एक महान लक्ष्य सामने हो तो अपने आप शक्तियां संग्रहित हो जाती है। वहां पर आज एक हिरकनी बुर्ज कहते हैं, मीनार खड़ा है जो उसकी याद दिलाता है। उस साधारण सी ग्वालिन में इतनी शक्ति कहां से आ गई? एक लक्ष्य की वजह से, एक इमोशन की वजह से, एक महान प्रेरणा जागी भीतर। यदि हमारी दिनचर्या की शुरुआत में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है दिन का, तो दिन भी बिखर जाएगा, लक्ष्यहीन दिवस। आज सुबह की अव्यक्त वाणी अमृत वेले के विषय में क्या कहा? अमृत वेले की शक्ति क्या, वरदान को क्या करो, डैश करो, डैश करो। मुरली पड़ी है ना, तीसरी बार मुरली चल रही है। सबसे पहली बार चली 15 नवंबर 2009, दूसरी बार 15 नवंबर 2018 बाबा मिलन शांतिवन, तीसरी बार आज। क्या करो? स्वीकार करो। क्या करो? स्वीकार करो। अमृत वेला का जो बच्चे महत्व रखते हैं, उनका डैश क्या, बाप दादा क्या करते हैं उनको? शक्ति भरते मुरली का बताओ, चिंतन नहीं। बाप दादा के दिल तख्त पर वो विराजमान होते हैं, और जिन्हें महत्व ही नहीं है, रात भर बैठ रहे मोबाइल लेकर 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे 12 बजे तक, फिर कैसे उठ पाएंगे? दुनिया वाले 8 घंटा सोते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। साकार महावाक्य। इन्वर्टेड कॉमा, ये वक्त नहीं है सोने का, जागरण की वेला है। जब संसार सोता है तो योगी जागता है और तपस्या रात की तारीकी में, रात की खामोशी में की जाती है। तपस्या कब की जाती है? जब इन द सिबिलेंस ऑफ द नाइट, सिबिलेंस अर्थात ऐसा आवाज होता रहता है ना रात में, कैसा आवाज, सन्नाटा। संसार की आत्माएं सो रही है। और मधुबन का दृश्य देखा है ना सबने सुबह का, कैसा मौन होता है, पिन भी गिर जाए तो आवाज। इन द सिबिलेंस ऑफ द नाइट, इन द डार्क सॉलिट्यूड ऑफ द नाइट, योगी जागता है और तपस्या करता है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, क्या क्या कहा, तीसरी बार चल रही है, क्या क्या कहा। इन तक और क्या कहा, याद करो, इंस्टेंट रिकॉल टेक्निक, जो भी पढ़ो 24 घंटे के अंदर वो एक बार रिवाइज होना चाहिए, नहीं तो 60-70% वो भूल जाता है। फर्स्ट रिवीजन स्टूडेंट्स के लिए 24 आवर्स के अंदर, सेकंड रिवीजन एक हफ्ते के अंदर, थर्ड रिवीजन एक मास के अंदर, फोर्थ रिवीजन 6 मास के अंदर। कुछ भी नए पे जाने से पहले पुराना रिवाइज करना है। आज की मुरली पढ़ने से पहले कल की मुरली, मेंटल रिवीजन या ब्रेन डंप टेक्निक, जो याद आता है सब कुछ उतार दो पेपर पर। उसको कहते हैं राइटिंग थिंकिंग, थिंकिंग राइटिंग, लिखते लिखते सोचना। तो क्या कहा आज की मुरली, 100 बातें बताओ, कितनी, 100। चलो चेक चेंज, अच्छा अच्छा के बाद ओम शांति, उसके बाद आज मुरली की शुरुआत कहां से होती है, आज। हर मुरली का आदि है आज, वो आज अर्थात 2009 नहीं, हर मुरली की शुरुआत होती है आज से और अंत होता है अच्छा से। इस आज और अच्छे के बीच में इस सृष्टि का और अस्तित्व का रहस्य समाया हुआ है। परमात्म वाणी समाई हुई है, परमात्म के महावाक्य, परमात्म ऊर्जा समाई हुई है आज। कौन सा आज, आज और क्या है, 3 हो गए ना बाप दादा, 4 हो गए, और बताओ राज दुलारे बच्चे, और दिल तख्त हो गया, और किससे सेवा की वृद्धि करना है, चलन चेहरे से, मनसा वाचा, और खुशी बांटनी है किसको, और रहम दिल, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, 1 सेकेंड कितने के बराबर, एक घंटे और पिछले संडे 2 सेकेंड, 2 साल के बराबर, कई सालों के बराबर, ऐसा भी कहा है। और क्या कहा? तूफान को तोहफा और समस्या को समाधान। कौन सा पुरुषार्थ? अभी का पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ तैयारी, अटेंशन, बहुत काल, अचानक और खुशी हो गया। अपना चार्ट चेक करो और दूसरे का नहीं करना है कि ये आज दिख नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, रोज यहां बैठता है, आज सीट खाली है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा क्या है। और मधुरता, नम्रता, अच्छा, और इच्छा मात्र अविद्या, और संगठन सहयोग समाना सामना करना, और बाप का पैगाम दो, और बीच में माया का राज्य तो नहीं आ जाता है, और अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाने कौन आता है? माया, जीवन में जो माया आ रही है, जीवन में जो परिस्थिति आ रही है, जीवन में जो समस्याएं आ रही है, वो सब किस लिए? अनुभवी बनाने, सिखाने के लिए। ये विकार हमारे गुरु है, रावण तो हमारा परम गुरु है। कितना सिखाता है? सिखाता है ना, पग पग पर सिखाता है। माया कितना सिखाती है, विकार कितना सिखाते हैं, दुख क्या है ये वो सिखाते हैं। ये दुख है और सबसे बड़ी धारणा संपूर्ण पवित्रता, और सबसे बड़ा धर्म, और चलना नहीं है अभी, उड़ना है, अभी करना है, अभी, कल करूंगा, ये टाल मटोल की लोरी है। तो गे 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 गे, और संपूर्ण संपूर्ण संपन्न। 10 पॉइंट हो गए, अभी 90 बाकी है। और अंतिम पेपर अचानक बाइबल में 5.2 थियोसोफियन, द डे ऑफ द लॉर्ड शैल कम लाइक थीफ एट नाइट। अंतिम का जो समय है वो कैसा आएगा? एक चोर की नाई, एक चोर की भांति, आधी रात को चोर कैसे आता है? चुपचाप दबे पाव आता है। उसी तरह बाबा ने क्या कहा, लास्ट पेपर जो है कैसे आएगा? अचानक, जैसे बिजली गिर गई। द डे ऑफ द लॉर्ड शैल कम लाइक थीफ एट नाइट, एकदम दबे पाव, एकदम चुपचाप और एकदम अचानक। हमने सोचा नहीं होगा कि आज की जो रात है, ये जो रात, आज कितने बजे? अभी बस 5 मिनट बाकी, ये अंतिम रात है सृष्टि की। ये भी हो सकता है कि नहीं, कोई कह सकता है कि नहीं, मैं कल जिंदा रहूंगा, कल का अमृत वेला अच्छा करूंगा। इसके पहले भी सुनाया था, व्यक्ति छत पर है, उसका मित्र आया है, गेट पर है नीचे, वो कहता है मैं आ रहा हूं, हेलो, आ रहा हूं, ओम शांति, बस पहुंच रहा हूं। उतरते उड़ते सीढ़ी पर हार्ट अटैक, खलास, नीचे आ रहा था ऊपर चला गया। जीवन कितना अनित्य है, अभी है, अभी खत्म, खलास। इस हफ्ते में, लास्ट वीक, हॉस्पिटल में कम से कम 3 से 4 लोग ब्रॉड डेड लाए गए, कैजुअलिटी में, ईआर में। ब्रॉड डेड अर्थात जब पहुंचे हॉस्पिटल में जा चुके थे, भाग भाग के रिलेटिव्स लेके आए, क्या हो गया क्या हो गया, दादाजी को क्या हो गया, माता को क्या हो गया। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जब पहुंचे, स्ट्रेट लाइन, ब्रॉड डेड। ऐसे इस हफ्ते में 3-4 लोग थे, उससे भी ज्यादा शायद, एक तो आज सुबह ही। और क्या कहा, अमर अमर बन अमृत पिलाते रहो। और जिसने एक भी पॉइंट नहीं सुना है अभी तक, पहले वो सुनो। हाँ, अपने आप को क्वेश्चन करो, तूफान आता है तो तोहफा बनता है, और कंबाइंड, और रहम दिल, और चलना नहीं उड़ना है, दो बार हो गया, और हाँ सुख शांति अतीन्द्रिय सुख खुशी, इनका राज्य है या कोई और राज्य है, और खजाने को क्या करो, कार्य में लगाओ, कब, अभी, नाउ, और अभी अभी तुरंत कार्य में लगाना है। अगर नहीं लगाए तो क्या होगा, मेडिकल में एक टर्म है मिसयूज एट्रोपी। अगर किसी का हाथ है जहां नीचे एक माउंट से नीचे जाते हुए एक छोटा सा मंदिर है, वहां एक साधु जी महाराज थे, वो ऐसे ही बैठे रहे कई साल महीने तक, एक ही मिस में उठे ही नहीं, तो हाथ उनका अकड़ गया था, ऐसे ही हो गया और वो पतला पतला हो गया था। जिस अंग को यूज नहीं किया जाए वो सिकुड़ जाता है। इन शक्तियों को अगर प्रयोग नहीं किया तो वो भी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और क्या कहा, प्रभु चिंता या चिंतन, प्रभु चिंतन, उनके मन में चिंता और तुम्हारे मन में चिंतन। और कितनी अच्छी लाइन है, ये ऐसी लाइंस जो मुरलियों में आती है, उनको क्या करना है उनको अलग से निकाल लेना है, एक्सट्रैक्ट द पॉइंट, अलग से रख देना है और फिर उसको रिवाइज करना है। और शुभ चिंतन, सहयोग, और समय पर यूज होते देखो, उदाहरण दिए। और अगर कोई बहुत थका है और उसे आराम मिल जाए तो क्या होता है, कहां पर है ये, कहां है मुरली में ये उदाहरण, हाँ वरदान में तो नहीं है, दादियों से मुलाकात। और पुरुषार्थ, तो इस मुरली से हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट एक, ए ए ए ए ए से पॉइंट्स लेंगे सारे। तो एक एक बच्चा कौन है, राज दुलार, और एक एक बच्चे को 3 तख्त प्राप्त है, कौन से, स्वराज्य का तख्त नाव, दूसरा आगे का विश्वराज, और अभी का परमात्म दिल तख्त। इस तख्त पर कौन बैठ सकता है, किसी एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने इसका उत्तर दिया था, जिसके लिए 2 क्राइटेरिया है, कौन सा, 2010 की अव्यक्त वाणी अक्टूबर। इस तख्त पर 2 क्राइटेरिया, पहला जो बाप की याद में मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरा जो बहुत प्योर है। यह तख्त कैसा है, एकदम प्योर शुद्ध, एकदम खालिस पूरा। दूसरा अगर अपवित्र इसमें बैठ ही नहीं सकता, क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। यदि भगवान के दिल तख्त पर बैठना है तो क्राइटेरिया क्या है, प्यूरिटी। बुद्धि ना हो तो चलेगा, बहुत कुछ याद नहीं रहता है तो चलेगा, सेवा बहुत नहीं कर सकते चलेगा, पर क्या चाहिए? प्यूरिटी। तो ताज नहीं, तीन तख्त अभी का कौन सा? स्वराज्य का। बाकी सारे राज्य है पर ये राज्य नहीं है, तो क्या है? जैसे भटक रहा है व्यक्ति, राज्य है ही नहीं। दूसरा पॉइंट, एक राज्य, एक धर्म, एक लॉ एंड ऑर्डर। तो सबसे पहली पॉइंट, एक राज्य है, माया का राज्य तो नहीं है बीच में, संतुष्ट है, निर्विघ्न है, अखंड है, दो राज्य तो नहीं है। सुबह भी हम कह रहे थे कि एक व्यक्ति था जो रोज मंदिर में जाता था, परंतु 10 कदम चलने के बाद ही पीछे मुड़ता था, अपने घर का ताला फिर से चेक करता था, ठीक से लगा कि नहीं लगा। थोड़ा सा चलने के बाद फिर पीछे आता था, फिर एक बार देखता था कि ठीक से ताला लगा या नहीं लगा। निरंतर उसके मन में यह रहता था कि ताला ठीक से लगना चाहिए, कोई चोर तो नहीं आ जाएगा। और मंदिर में जब पहुंचता था और भगवान के सामने प्रार्थना करता था, तब भी मन में ताला ही घूमता था, पर लोग क्या कहेंगे इस डर से वापस नहीं जाता था। फिर 2-3 बार तो जाके आ ही जाता था, पर लोगों के डर से प्रार्थना करता है, आरती करता है, पूजा करता है, पर बुद्धि कहाँ है? जब तक वापस जाकर ताला जब देखता था कि सुरक्षित है, तब उसको राहत मिलती थी। परंतु अनन्य भक्त था और रोज भगवान के मंदिर में जाता था। एक दिन उसके जीवन में अत्यंत भयंकर संकट आ गया और वो मंदिर में गया और प्रभु से कहने लगा कि अब तुम ही मेरा सब कुछ हो, यदि मैंने इस जीवन में तुम्हें सच्चे मन से याद किया हो, प्रेम किया हो, मेरा सारा पुण्य, तो मुझे इस संकट से बाहर निकालो। और अचानक चारों तरफ से चाबियों की वर्षा उस पर होती है। वो कहता है ये क्या है? गर्भगृह से भगवान की आवाज आती है, इतने सालों से तुम मेरे पास आते हो, मेरे सामने खड़े रहते हो, पर तुम पूजा किसकी करते हो? ताले की। तुम भक्ति किसकी करते हो? ताले की। तो ताला तुमसे प्रसन्न हो गया, इसलिए जब ताला प्रसन्न हो जाए तो वर्षा किसकी होगी? चाबियों की। दो, द पाथ इज नैरो, ये मार्ग बहुत ही सरकरा मार्ग है, चामे दो ना समाए, दो इसमें नहीं चल सकते साथ साथ, एक राम चलेगा या तो काम, या तो राम या तो माया, जामे दो ना समाए, एक को ही जाना है, अकेले को ही जाना है, और उसी को साथ को साथ में लेके जाना है। किसी व्यक्ति को साथी बनाया, दोस्त बनाया, तो जा नहीं सकेंगे, द पाथ इज नैरो। एक राज्य, अखंड राज्य, निर्विघ्न राज्य, निष्कंटक राज्य, अबाधित, बस उस एक राज्य। हमारे मन में भी बाबा ने क्या, दो राज्य तो नहीं है, माया का राज्य और इधर अल्टरनेट, एक घंटा माया का राज्य, अगला घंटा बाप का राज्य, फिर माया का राज्य, अल्टरनेट बैलेंस, बाप और माया का बैलेंस, एक ही केवल। और इतनी मोटिवेशन के लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूअस मोटिवेशन चाहिए। पुरुषार्थ 10 दिन करना बहुत आसान है, 15 दिन करना आसान है। मधुबन में आए तो पुरुषार्थ का ग्राफ एकदम ऊपर, और यहां से जाने के बाद नहीं, उधर आबू रोड से ही ट्रेन में बैठते ही उधर की दुनिया चालू हो जाती है, और वहां पहुंचते पहुंचते तो कुछ और ही चालू हो जाता है। निरंतर अपने आप को मोटिवेट रखना, रोज अमृत वेला, रोज मुरली चिंतन, रोज अध्ययन, रोज योग के नए नए प्रयोग, तपस्या है। तो सबसे पहला एक राज्य, दूसरा एक धर्म। कौन सा धर्म? संपूर्ण पवित्रता का धर्म। Purity is the greatest religion. और जो धर्म है, यदि उसको समझना है तो उसके विषय में पढ़ना होगा। Purity से related जितनी मुरलियां है वो सब की स्टडी करो। Purity से related जितनी किताबें हैं उन सब बुक्स की स्टडी करो। और Purity कोई अभी का विषय नहीं है, द्वापर से चला आ रहा है। इस संसार को किसने थमा के रखा? सन्यासियों ने थमा के रखा। किस आधार पर? पवित्रता की, नहीं तो ये संसार खाक जल मरता। तो उसके विषय में क्या करना है? पढ़ना है, लिखना है, सोचना है, चिंतन करना है, डिस्कस करना है, और जानकारी प्राप्त करनी है। और क्या कर सकते, और क्या हो सकता है? ऐसे संसार में भी बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं लोगों के, कुमारों के, जो धर्म को नहीं मानते। ब्रह्मा कुमारी से तो उनका कोई नाता नहीं है। उनके भी ब्रह्मचर्य के ग्रुप्स बने हुए हैं, नोफैप ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। हर संडे वो लोग मिलते और डिस्कस करते, क्योंकि इवन लौकिक सक्सेस के लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। और काम विकार सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस है, पोल्यूशन है, लीकेज ऑफ एनर्जी है। ये वैसा ही है जैसे ठंड लग रही है किसी को और घर में बहुत अच्छे फर्नीचर है, और कोई सोचता है इन फर्नीचर को जलाकर आग से सेक लू। खुशी तो है, सुख तो है, पर अल्पकालिक सुख है और कॉस्ट बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी कॉस्ट देकर एक छोटा सा सुख मिलता है। जैसे कोई माली है, उसके पास फूलों का बगीचा है, सभी फूलों को एक महीने भर वो संभाल करता है, एक एक फूल की संभाल करता है, पानी डालता है, सब कुछ करता है। फिर महीने के बाद सारे फूलों को एकत्र करता है, उसका रस बनाता है और वो रस जाके गटर में डाल देता है। तो ये बुद्धिमान माली के लक्षण है या महामूर्ख माली के? जो ऊर्जा ऊपर बहनी चाहिए और ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, वो ऊर्जा यदि नीचे बह रही है तो ये मूर्खता की निशानी है या बुद्धिमान की? ऊर्जा नीचे बहेगी तो शरीरों को जन्म देगी, वही ऊर्जा ऊपर बहेगी ऊर्ध्वरेता योगी बनेगा, ओज और तेज आएगा। तो क्या करना है ये स्वयं ही सोचना है। यदि ऊर्जा को बहाने में सुख है तो उस ऊर्जा का संरक्षण करने में कैसा सुख होगा? तो संपूर्ण Purity, तो एक धर्म, तीसरा एक लॉ, एक ऑर्डर, एक अनुशासन। बिना अनुशासन के जीवन कैसा है? अनुशासन नहीं है जीवन में, स्वच्छंद जीवन है, जो मर्जी है वो कर रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ तो कभी कुछ। उस जीवन में कोई रूटीन नहीं है, कोई फिक्स्ड दिनचर्या भी नहीं है उसमें। जब मन हुआ तब इधर, जब मन हुआ तो उधर, भटक रहे। किसने कहा इधर चलो तो उधर चले गए, किसने कहा उधर चलो तो उधर चले गए। तो लॉ कब लाना है? लॉ एंड ऑर्डर नाउ। और वो अनुशासन भी एक बंधन ना बन जाए, ये जबरदस्ती करना पड़ता है, जबरदस्ती उठो, जबरदस्ती मुरली क्लास में जाओ, नहीं तो ये ब्राह्मण परिवार कहेगा तुमको माया ने खा लिया। डर भी तो है, पर अच्छा वाला डर है ये। फायदा है। पर अनुशासन कैसे हो? एक बंधन नहीं, एक जबरदस्ती नहीं, जबर नहीं, कैसे हो जाए? स्वभाव। अनुशासन क्या बन जाए? आनंद। इसलिए इंग्लिश में एक नया शब्द है, अनुशासन और आनंद मिलाकर, डिसिप्लिन और ब्लिस, ब्लिसिप्लिन, ब्लिसिप्लिन, ब्लिसिप्लिन अर्थात अनुशासन का आनंद, और धीरे धीरे उसी में खुशी होने लगती है। जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, जिम में जाने वाले, कितना घंटा जिम करते? डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटा जिम करते। सुबह 2 बजे उठ के 4 बजे तक जिम, 4 बजे हॉट कोल्ड वाटर इमर्शन, वो बाथटब होता है ना, चिल्ड कर देते उसका बटन, और एकदम थक जाते पूरा पसीने से लथपथ, और सीधा उसके अंदर, और थोड़ी देर में उसको हॉट कर देते 40 डिग्री, फिर ठंडा कर देते। हॉट कोल्ड, हॉट कोल्ड, जेम्स बॉन्ड बाथ शावर। उनके सामने कोई लक्ष्य है, कोई प्रेरणा है, इसीलिए इतना डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन केवल शरीर का नहीं है, मन का है। जो रनर्स होते हैं कितना डिसिप्लिन होते है? इवन एक्टर्स कितना उनमें अंदर से डिसिप्लिन। वो अलग है, जब कला और बिजनेस एक हो जाता है तो डिटियोरेशन चालू होता है, पतन। जहां बिजनेस आ जाता है, कॉमर्स आ जाता है, कमर्शियल बन जाता है, तब उसका पतन। नहीं तो आर्ट जो है वो बहुत ऊंचा है, उसमें क्या चाहिए? समर्पण चाहिए, तपस्या है वो, कोई भी कला। तो ये तो सबसे महान कला है। तो वन लॉ एंड ऑर्डर। तो दिनचर्या में क्या हो? एक ऑर्डर, एक टाइम। ये एक्सरसाइज का टाइम, ये मुरली का टाइम, ये चिंतन का टाइम, खुद के लिए टाइम, टाइम बॉक्सिंग, बॉक्सेस में डिवाइड करना है टाइम को। अब यहाँ आए, उधर चलो तो उधर चले गए, इधर चलो तो उधर चले गए। कोई रूटीन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो राजा जब यहाँ होंगे तब राजा वहां होंगे। जो VIP लोग होते हैं उनका टाइम कैसे होता है? कहीं कहीं कभी भी जाके उनको कहो हमारे इधर प्रोग्राम है, चलो। चलो ऐसे होता है क्या? हाँ, क्या होता है उनका टाइम? इस मुरली में भी कहा ना बाबा ने, समय के लिए। तो टाइम पर काम करना है, समय बहुत कम है, टाइम पे काम करना है। तो ये तीन, तो सबसे पहला पॉइंट बताया एक एक बच्चा, दूसरे पॉइंट में ये तीन बातें, थर्ड पॉइंट एक अनुभव, अनुभव, ए फॉर अनुभव। जो परिस्थिति आ रही है वो किस लिए आ रही है? उनको कैसे देखना है? ये मुझे अनुभवी बनाने के लिए आ रही है, एक आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, विघ्न विनाशक का सर्टिफिकेट देने आ रही है, और किस लिए आ रही है? जो हमने पढ़ा उसका ये प्रैक्टिकल पेपर है। खाली पढ़ के कोई कहते मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत होशियार हूं, कौन मानेगा? एग्जाम दो, उसमें टॉपर बन के दिखाओ तो मानेंगे कि तुमने पढ़ाई की, है ना? तो समझा जाएगा। तो ये तो जीवन का पेपर है, इसमें पेपर आएगा जहां सहन करना है। और हर कला कैसे बढ़ती है? एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से। जब 10 बार सहन करेंगे तो 11वें बार जो सहन करना है उसमें अनुभव होगा कुछ। 10 बार नेगेटिविटी का सामना करना पड़े तब सहन करना, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ। तो क्या करना है? अनुभव। इनको ये नहीं समझना मेरे साथ ऐसा सब क्यों होता है, बहुत खराब लोग हैं। बाबा मेरा कल्याण हो ना हो, पहले इनका कल्याण करो। इनको डिपार्टमेंट से चेंज करो, इसकी ट्रांसफर कर दो बाबा जल्दी, कुछ तो करो इसका। सुबह भी कहा था, एक व्यक्ति की किराने की दुकान थी, सदियों से दादा पर दादा होगी, और अचानक एक दिन उसी दुकान के सामने एक सुपरमार्केट खुल जाता है, बड़ी दुकान। अब इस व्यक्ति को चिंता होने लगती है, अब मेरा क्या होगा, सारे ग्राहक कहाँ जाएंगे, अब बड़ी दुकान में जाएंगे। तो अपने गुरु के पास जाता है, कहता है मैं क्या करूं। गुरु कहता है अगर तुम उस नए दुकानदार से, सुपरमार्केट वाले से नफरत कर डरोगे तो तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत पैदा होगी। तो कहता है अब मैं क्या करूं, मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी। गुरु उसको कहता है तुम एक काम करो, जब भी तुम सुबह सुबह टहलने जाते हो तो अपनी दुकान के पास से गुजरो और अपनी दुकान को आशीर्वाद दो, दुआएं दो, इसकी समृद्धि हो जाए, और फिर उस दुकान की तरफ देखो और उसको भी आशीर्वाद दो कि ये दुकान भी बहुत आगे चली जाए, इसकी भी वृद्धि हो जाए। वो कहता है ऐसे मेरे दुश्मनों के प्रति मैं आशीर्वाद दूं, वो मेरा प्रतिद्वंदी है, मेरी दुकान बंद करने पे तुला है। गुरु कहता है ये करो, जो तुम उसको दोगे वो लौट कर तुम्हारे पास आएगा। एक साल के बाद वो व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता है और अपने गुरु से कहता है मेरी दुकान बंद हो गई, मेरी दुकान बंद हो गई। अब प्रश्न आपसे, ऐसा क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो रोज उस दुकानदार को आशीर्वाद देता रहा, दुआएं देता रहा, और धीरे धीरे उस दुकानदार के साथ इसकी दोस्ती हो गई, और दोस्ती होने के बाद उस दुकानदार ने इसने उसको अपना पार्टनर बना दिया, और पार्टनर बनाने के बाद देखा कि इसके पास तो बहुत ज्यादा अनुभव है, और धीरे धीरे अपने सारे अधिकार उसको दे दिए, और फिर अपनी दुकान का मालिक इसको बनाकर वो शहर छोड़कर चला गया। तो इसलिए छोटी दुकान तो बंद करनी पड़ेगी ना तो जब भी हम किसी को आगे बढ़ता देखें, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हम ईर्ष्या उसकी सफलता से करते हैं, उस व्यक्ति से नहीं कर रहे, तो सफलता भी हमारे पास नहीं आएगी। कोई हमारे सामने आकर आगे बढ़ रहा है, हम क्या सोचते हैं उसको नीचे खींचो। ये लॉ ऑफ द यूनिवर्स, तो वो सफलता हमसे दूर जाएगी, सब आगे जाए यही भाव। तो थर्ड पॉइंट क्या करो, तूफान आए तोहफा समझो, माया से सीखते जाओ। जितने भी है वो सब कौन है, हमारे उस्ताद, गुरु, गुरुजी। इस हॉल में कितने लोग बैठे हैं ये जितने बैठे हैं वो सब क्या समझो, ये सब मेरे कौन है, गुरु। किस लिए आए हैं, मुझे सिखाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। और कोई कोई विशेष गुरु होते, महागुरु, वो अमृत वेले हमारे विषय में गहन चिंतन करते हैं, हमारे दुर्गुणों का चिंतन करते हैं, एकांत में मौन में नकीरी पर जाते हुए हमारी एक एक बात को याद रखते हैं, उससे निष्कर्ष निकालते हैं, और प्रॉपर समय में और मौका मिलने पर हमें याद दिलाते हैं कि तुमने ये गड़बड़ की है। इतना बड़ा त्याग करने वाले जो है हमारे लिए, जो हम पर पीएचडी कर रहे हैं, वो गुरु ही हुए ना कि नहीं, तो उनको क्या करना चाहिए, धन्यवाद, धन्यवाद। फोर्थ पॉइंट क्या कहा बाबा ने, रोज रोज चार्ट चेक करो, एक एक रोज चार्ट चेक करो, ए फॉर एक एक रोज, एक एक दिन और क्या करो, चेंज चेक चेंज चेक चेंज चेक चेंज, ये काम करते रहना है, चेक चेंज चेक चेंज चेक चेंज चेक चेंज, चेक करो कोई तो गड़बड़ है, चेंज करो, चेक करो गड़बड़ है, चेंज करो, चेक करो फिर चेंज करो। ये प्रोसेस कब तक चलती रहे? अनंत काल, निरंतर चालू ही रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है ही जो नहीं है। हम सोचते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, पर हम नहीं देख पाते अपने आप को, इसलिए दूसरे अच्छे से देख पाते हैं। दूर से ना अच्छे से दिखता है, नजदीक से दिखाई नहीं देता है, गलती। दूर वाले अच्छे से देख सकते हैं, अगला एक सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट एक सेकंड। तो यहां बाबा ने क्या कहा, समय का महत्व, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्टर्स की लिस्ट निकालनी है, एनर्जी ड्रेनर्स की लिस्ट निकालनी है, जो हमारी एनर्जी को खींच लेता है, इमोशनल लीकेज जहां हो जाता है, जो चीज हम देख लेते हैं वो अंदर जाती है, ऊर्जा बहती है, जो विचार उत्पन्न होता है वो ऊर्जा को खींच लेता है। निगेटिविटी, एक निगेटिव विचार है, सुबह सुबह उठ के निगेटिव विचार आया, दिन भर चलता है अपने आप। उस पे काम करना है कि टाइम वेस्ट ना हो। टाइम बॉक्सिंग, टाइम बफरिंग, अलग अलग सिद्धांत है। टाइम बॉक्सिंग मतलब 6 से 7 बजे तक क्या करना है, 7 से 8 क्या करना है, 8 से 9 क्या करना है, 9 से 10 क्या करना है। मधुबन में आ रहे हैं, वहां से ही प्लानिंग करके आना है, क्या करना है मधुबन में आके, कितने घंटा तपस्या करनी है। हमने देखा है कितनी माता है पूरा तैयारी से आती है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। रोज 6 घंटा योग होना चाहिए जब बाबा मिलन में आते हैं तो, या जब भी आते हैं। अगर लक्ष्य नहीं रखा तो क्या करेंगे, इसको मिलेंगे, उसको मिलेंगे, इससे मिलेंगे, उधर मिलेंगे, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है मिल लिया, आगे आगे क्या और सुनाओ उधर क्या चल रहा है, और सुनाओ भालू मिला या नहीं मिला, बारिश का क्या चल रहा है, और सुनाओ क्या बना आज ब्रह्मा भोजन में, बातें गैस का क्या चल रहा है और सुनाओ एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात। 1 घंटा गया। एक इंग्लिश ग्रामेरियन ने लिखा है, इंग्लिश व्याकरण के जो एक्सपर्ट होते हैं ना, केवल उन्होंने कहा, मैं देखता हूं लोगों को चाय की टपरी पर खड़े हैं और घंटों व्यर्थ की बातें कर रहे। अगर यही सारे लोग अगर भाषा के और उसके व्याकरण का अध्ययन करते तो जीवन भर के लिए दे वुड हैव बिकम द बेस्ट स्पीकर्स। कितना अच्छा बोल पाते वो अगर भाषा पर उन्होंने काम किया होता तो। पर कर क्या रहे, टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट। कहां टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता है। अंत में डोपामिन डंपिंग, डोपामिन लोडिंग उस दिन भी सुनाया था। हमारे शरीर में खुशी वाला हार्मोन कौन सा है, डोपामिन। शॉर्ट्स रील्स, एकदम हार्मोन ऊपर चला जाता है, एकदम खुशी देता है, वो वादे का हार्मोन है, बहुत खुशी देता है, पर थोड़ी देर के बाद खालीपन, अकेलापन, दुख, पश्चाताप, काम विकार, डोपामिन डंपिंग सीधा ऊपर, उसके तुरंत बाद पश्चाताप, खालीपन, पश्चाताप, अकेलापन, फ्रस्ट्रेशन और थकान। कुछ खाया एकदम स्वादिष्ट, डोपामिन डंपिंग, और उसके बाद भारीपन, एसिडिटी, उठने की इच्छा होती है क्या फिर? ना, अभी तो 3 ही बजे अभी टाइम है। अब वो गीत बजेगा ना, अमृत वेला शुद्ध पवन है, कब शुद्ध पवन बह जाती है पता ही नहीं चलता। और फिर भाग भाग के 4 बजे चुपके से डोपामिन डोपामिन डंपिंग, और फिर जो मेहनत वाले कार्य है, बुद्धि वाले काम, उसमें मन नहीं लगता है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्योंकि बॉडी को आदत हो गई है मन को एकदम हाई पीक हैप्पीनेस की। और ये सब इसलिए कहते हैं डोपामिन लोडिंग। सुबह सुबह वो सारे काम करो जो हमें बहुत कठिन लगते हैं, जैसे मुरली पढ़ना, अध्ययन करना कठिन काम है, उसमें ना डायग्राम है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई जोक है, पूरा एक टेक्स्ट है, 8 पेज की मुरली, 4 पेज की मुरली। तो इसमें पढ़ने में क्या होता है, फिर बाप आए हैं तुम्हें आदि मध्य अंत न ज्ञान देने के लिए, काम महाशत्रु है, दिव्य गुण धारण करो, विनाश सामने खड़ा है, अंधों की लाठी बनो, तुम्हें रहम दिल भी बनना है, तुम्हें बाप को याद करना, तुम्हें आत्मा समझ के बाप को, देह सही देह के सारे संबंध भूल, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें मेहनत है, तुम्हें गफलत नहीं करनी है, मन मना भव श्रीमत पर चलो, कितना सारा है, सब 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 हजारों बार सुना हुआ है, अब जब पढ़ता है इधर से आता है और कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बुद्धि को चटपटा चाहिए। क्या चाहिए उसे, इनोवेटिव, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ प्रेरणादायक चाहिए, इसलिए भाषा और शब्द बदलने की आवश्यकता है, नया दृष्टिकोण, नहीं तो वही 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 वही, जैसे रामायण सुना है ना, रामायण सुनते हैं ना भक्त, आधे सोते रहते हैं, कितनी बार सुनेंगे, उनका भी कोई दोष है। रिपीट रिपीट, ज्यादा अगर वही वही चीज रिपीट होती है तो क्या होता है, उब। एक रामलीला हो रही थी जिसमें वो जो अंगद है ना, वो अपने डायलॉग ही भूल जाता है। तो वो राइटर जो होता है नाटक का, वो उधर से सब कहता है, अरे ऐसा ऐसा बोलो, रावण को बोलो, मैं पैर हिला के दिखाओ, ये हिलाओ, तो वो इतना सारा बोल देता है, कहता है ये सब मुझे याद नहीं है, रावण तुमने सुन लिया ना, वो करो। उसके बाद टाइम तो हो गया है, ए से और क्या है, खुशी, एक खुशी वो जानी नहीं चाहिए, खुशी जो है वो हवा ने कहा बांटते रहो, चेहरे से दिखाई दे, वो जानी नहीं चाहिए। उमंग उत्साह, जाना नहीं चाहिए, सेवा करते रहो, उत्साह हमेशा बना रहे, खजाना है ना वो, उसको यूज करते रहो। ऐसे कैसे, खुशी के खजाने को बांटने वाले, ऐसे चलन और चेहरे पर खुशी दिखाने वाले, ऐसे ऐसे 3 तख्त के निवासी, ऐसे चेक और चेंज करने वाले, ऐसे एक धर्म एक राज्य एक लॉ एंड ऑर्डर निर्विघ्न राज्य अखंड राज्य स्थापित करने वाले, ऐसे संपन्न संपूर्ण बनने वाले अमृत वेले विशेष वरदान लेने वाले, ऐसे समय का महत्व समझने वाले, ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसे सहने की शक्ति समाने की शक्ति संगठन की शक्ति के में रहो तो कोई इस घेराव में नहीं आ सकता, ऐसे ऐसे रहम दिल मीठे बोल मीठे कर्म मीठी दृष्टि अमृत पिलाने वाले, ऐसे अमृत वेले बाबा के वरदान को स्वीकार करने वाले, स्वीकार हम करेंगे तो उसको खुशी होगी। हमने किसी के बर्थडे को किसी को गिफ्ट दिया और उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, दुख होता है ना, उसने स्वीकार ही नहीं किया, और भगवान वरदान दे रहा है और हमने स्वीकार ही नहीं किया तो उसको अच्छा लगेगा क्या, बुरा लगेगा। ऐसे संगठन का सहयोग, ऐसे अनुभव की सीढ़ी चढ़ने वाले, ऐसे उड़ने वाले, ऐसे उड़ाने वाले, ऐसे 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 प्रभु चिंतन में रहने वाले, ऐसे सेवा करने वाले, सेवाओं की वृद्धि करने वाली आत्माओं को बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।